जो है उस समय सार की हम 16 नंबर का तो हमने गाथा पढ़ ली थी, उसके ऊपर जो कलश चल रहे हैं उस कलश के 19 नंबर का जो कलश है उसको हम देख रहे हैं।
6 नंबर पृष्ठ पर है।
हाँ जी, 6 नंबर पृष्ठ पर 19 नंबर का कलश लिखा है।
आत्मनश्चिन्तयैवालं मे च कामे च कत्वयोः दर्शनज्ञानचारित्रैर्साध्यसिद्धिर्न चान्यथा। देखो पहला शब्द क्या है, आत्मनश्चिन्तयैवालं, ये कौन सा वाला है? तो इसको ऐसा पढ़ना, आत्मनः चिन्तया एव अलम।
अलम बस करो,
अलम यानी अभी बस करो, चिंता मत करो कहते हैं, चिंता से भी बस कर, ऐसी बात है। अभी पढ़ेंगे उसका अर्थ, श्लोकार्थ में आ जाएगा। आप पढ़ेंगे श्लोकार्थ, आप पढ़ेंगे क्या?
हाँ पढ़ रहा हूँ। देखो आत्मनः यानी आ आत्मा, मेचक अमेचकत्वयो हो यानी मेचक छे इतले भेद रूप छे, अनेकाकार छे, तथा अमेचक छे अभेद रूप एकाकार छे, चिंतया एव अलम एवी चिंताती तो बस थाओ। यानी यहाँ बार बार जो बता रहे कि वह मेचक भी है अमेचक भी है, प्रमाण की अपेक्षा से ऐसा है नहीं की अपेक्षा से ऐसा है, द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा ऐसा है, पर्यार्थिक नहीं की अपेक्षा ऐसा है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा, तो कहते ऐसा वह मेचक और अमेचक पना जो उसके दो भेद किए हैं, तो ऐसा कहते हैं कि ऐसी जो चिंता जो कर रहे हैं आप, यानी ऐसा जो चिंतन कर रहे हैं, इनाती बस थाओ। क्यों बस थाओ? क्योंकि ये सारे विकल्प जो है वे विकल्प तुम्हें निर्विकल्प बनने नहीं दे रहे हैं, इसलिए बस थाओ ऐसा कहते हैं। साध्य सिद्धि ही, साध्य आत्मानी सिद्धि तो दर्शन ज्ञान चारित्र ही, दर्शन ज्ञान ने चारित्र ए त्रण भावो थी ज छे, न च अन्यथा, बीजी रीते नथी ए नियम छे। क्या कहना चाहते सुनो सुनो, यहां ये बात समझाना चाहते हैं कि ये साध्य कौन है अपना। हाँ बोलो बोलो। हाँ शाबाश। आत्मा जो त्रिकाली जो स्वभाव है वह आत्मा, अभी वो साध्य की सिद्धि जो हमें करना है तो उसके लिए कौन उपाय है, कौन सी विधि है, किस प्रकार से, कौन सा अनुष्ठान है कि जिसके कारण हम उस साध्य की सिद्धि करनी है।
साध्य में मोक्ष को लेंगे,
साध्य
साधक भाग हमने देखा था, साध्य साधक भाव।
हाँ,
साध्य ने मोक्ष लेंगे
तो मोक्ष ही लिया ना हमने, कहा था
आत्मा लिया।
यहाँ तो देखो देखो देखो, हाँ
स्वीकारी आत्मा तो ध्येय होगा, साध्य तो पूर्ण पर्याय होगा।
गलती हो गई, यहाँ तो ऐसा कहना है कि साध्य जो है वह तो हमारी मोक्ष दशा है, और जो साधक दशा जो है वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की है। तो यह साध्य यानी मोक्ष की जो अवस्था है, जो हमारा साध्य है, उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? तो कहते हैं कि यह जो दर्शन ज्ञान चारित्र यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यह एकमेव साध्य की सिद्धि का उपाय है। और नच अन्यथा यानी बीजी रीते नथी यानी दूसरे कोई भी उपाय से हम साध्य की सिद्धि नहीं कर सकते। यानी मोक्ष प्राप्त करने का एकमेव उपाय कौन सा है? तो कहते अपने आत्मा का अनुभव करना। उसी को तीन भाषा में कहना है तो, तीन शब्दों में कहना है तो दर्शन ज्ञान चारित्र, ये बात बता रहे। तो अभी अन्य अन्य लोग ऐसा मानते हैं, अन्य मतियों के, हम क्या बोलते हैं, भक्ति मार्ग से मोक्ष प्राप्त करेंगे। कोई कहता है योग मार्ग से हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। कोई कहते हैं हम ज्ञान मार्ग से, ऐसे है ना कि हम भक्ति 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 करेंगे और हम साध्य की सिद्धि करेंगे। तो यहाँ जिन्होंने उस मोक्ष मार्ग पर चलना शुरू किया है, आक्रम मतलब मार्गरत है, ऐसे जीव जो जिनेंद्र भगवान जिन्होंने साध्य की सिद्धि की है, एज गुड एज की है, यानी मोक्ष अवस्था प्राप्त भले न की हो लेकिन वो कोई दूर नहीं है, ऐसे जो सर्वज्ञ भगवान है वे भी ऐसा कहते हैं कि भाई इसको साधने का मार्ग कहो या साधने का उपाय कहो, एक ही है, अन्य कोई नहीं है। तो वो एक जो उपाय है वो कौन सा है? तो कहते हैं नीचे से तीसरी लाइन, साध्य आत्मानी सिद्धि तो दर्शन ज्ञान ने चारित्र ए त्रण भावो थीज छे। यानी जैसा मेरा स्वभाव है तो जो स्वभाव हमने आगम के माध्यम से या किसी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से हमने सुना है, पढ़ा है, समझा है, तो वही मैं हूँ, ये जो स्वरूप है वही, ये मेरा ही स्वरूप है, ऐसा समझकर जिसने श्रद्धा की है, प्रतीति की है, और यह ज्ञान में भी मैं यही हूँ ऐसा जिसके ज्ञान में आया है, और उसी स्वरूप में जो एकाग्र हो गया वह उसका चारित्र है। ये तीनों बातें जिसके प्राप्त हो गई है तो उसने तो साध्य की सिद्धि के लिए अपना कदम सही तरीके से उठाया है। तो यहाँ तो डायरेक्ट साक्षात आचार्य कहते हैं नच अन्यथा यानी ज्ञान दर्शन चारित्र के अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, ख्याल में है। और हम चाहे जो कहें कि ऐसा है वैसा है, अब ये जो ज्ञानेश्वर है या तुकाराम है, आप लोग नहीं जानते होंगे इनको, ये सब भक्ति मार्गी हैं, भक्ति से मार्ग, तो उनमें भी एक योग मार्ग चालू हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ तो कह रहे कि अपने आत्मा का अनुभव, क्योंकि भक्ति क्या है, भक्ति राग है ना, और हमें कैसा है, वितरागता प्राप्त करनी है, तो राग से तो वितराग स्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि राग है इटसेल्फ विकल्पात्मक है, तो विकल्प करते करते निर्विकल्पता आएगी ये बात भी नहीं है। तो ये बात समझकर हम यहाँ तो कहते कि अब आचार्य तो अपने को डायरेक्ट बता रहे हैं कि अब ये जो हमारे में भी ये मेचक है, ये अमेचक है, इस तरह का है, उस तरह का है, इस अपेक्षा से ऐसा है, ये सारे विकल्प से बंद हो जाओ। अभी तो तुम समझ गए ना आत्मा कैसा है, तो बस वैसा यानी वही मैं हूँ ऐसा हमारे को श्रद्धा हो जाएगी तो आगे की बात सारी सही है। तो अभी मूल बात तो ये ध्यान में रखनी है कि मूल बात तो हमें को ये ध्यान में रखनी है कि अभी हमें आत्मा का अनुभव करना है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष मार्ग पर आगे चलना है तो आत्मा का अनुभव इज अ मस्ट। दूसरे उसी को कहा है वो धर्म की शुरुआत है, उसी को कहा है वो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, जो भी आप समझ लो वहीं से तो आत्मा की सिद्धि जो है मतलब जो मोक्ष दशा है वो प्राप्त होने वाली है। ख्याल में तो देखो आत्मा में स्थिरता होना यही आत्मा की प्राप्त करने की विधि है और आत्मा में स्थिर रहना यही मोक्ष दशा प्राप्त करने की विधि, दोनों की एक ही है लेकिन उसमें टाइम फैक्टर बदली होगा। ख्याल में अब आ गया भावार्थ। आत्मान शुद्ध स्वभावनी साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा आत्मान शुद्ध स्वभावनी साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष ते साध्य छे। सर्वथा प्राप्ति यानी साक्षात प्राप्ति। हाँ जी साक्षात प्राप्ति का अर्थ
यानी पर्याय में जैसा शुद्ध स्वभाव है
नहीं 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 वैसे वो तो मैं ये देख रहा था कि अंतर्मूलत स्थिरता जो होगी वो साक्षात प्राप्ति कहेंगे।
नहीं 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 वो तो मोक्ष की बात चल रही है।
वही तो आत्माना शुद्ध स्वभाव नहीं साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष ते साध्य छे।
अभी साक्षात प्राप्ति ने पर्याय में प्रकट होना पूर्ण इतना ही लेना है। अंतर्मूर्त की कौन सी बात
नहीं कर नहीं नहीं सुनो सुनो ये मैंने अभी साध्य आत्मा ने सिद्धि तो आत्मा की सिद्धि आत्मा की प्राप्ति आत्मा का अनुभव ऐसा कहा था तो आपने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था। अब यहाँ क्या अर्थ निकालना है
साध्य शब्द के लिए साध्य आत्मा यानी क्या साध्य किसको कहना जो हमें अभी
साधना है वो
जो हमारे अभी नहीं हुआ है उसको साध्य कहेंगे। जो साधना है वो साध्य त्रिकाली आत्मा तो हम स्वयं है।
एक मिनट
हाँ
आत्माना शुद्ध स्वभाव नहीं साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष ते साध्य छे
जो अभी हमारे पास है नहीं है।
अभी यहाँ जो मैं कह रहा हूँ कि आत्माना शुद्ध स्वभाव नहीं प्राप्ति अभी ये जो प्राप्ति है उसमें साक्षात यह शब्द डला है।
साक्षात प्राप्ति ने पर्याय में प्रकट होना
तो ये तो चौथे गुणस्थान में भी हो सकेगा कि नहीं
पूर्ण रूप से लेना है।
तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि पूर्ण रूप से लेना यानी साक्षात यानी ये तो हम जब परिपूर्ण दशा लेते हैं केवल ज्ञान की कहो या सिद्ध की कहो तो वही तो बात लेनी है ना ऐसा मैं
पूछ रहा हूँ। पूर्ण पूर्ण शुद्ध दशा लेनी
सर्वथा मोक्ष लिखा ना ते साध्य छे तो ये बात अभी हम फिर से देखते हैं।
आत्माना अपूर्ण अवस्था को तो हम साधक कहते हैं ना तो ये पूर्ण अपना फाइनल गोल क्या है उसकी बात है।
तो आत्माना शुद्ध स्वभावनी साक्षात प्राप्ति यानी जो परिपूर्ण जो आत्मा में जो केवल ज्ञान प्राप्त होने के लिए जो स्थिरता के बाद जो होगा वही की परिपूर्ण अवस्था होगी कि नहीं वही तो मतलब उसके आगे की मोक्ष अवस्था है। तो वो जो अंतर्मुहूर्त जो आत्मा में स्थिरता होगी तो वही साक्षात प्राप्ति है ना ऐसा मेरा प्रश्न था।
स्थिरता को प्राप्ति नहीं कहेंगे स्थिरता को उपाय कहेंगे।
उपाय कहें तो ये आत्मा ना शुद्ध स्वभावनी प्राप्ति तो ये कौन सी अवस्था लेनी है
मोक्ष
अथवा सर्वथा मोक्ष
अथवा का अर्थ ही होता है मोक्ष के लिए ही वो साक्षात प्राप्ति लिख रहे हैं।
तो केवल ज्ञानी को साक्षात प्राप्ति नहीं है
भाव मोक्ष कहेंगे वहाँ।
हाँ वही तो भाव मोक्ष कहेंगे तो उसका ही अर्थ ये हो गया ना कि उसने एक अंतर मुहूर्त में जो अंतरंग में स्थिरता प्राप्त की थी आठवें से बारहवें तक तो उसके वो भाव मोक्ष प्राप्ति और अथवा सर्वथा मोक्ष यानी वो सिद्ध अवस्था और ये पहली अनंत अवस्था है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यहाँ तो उन्होंने साध्य तो मोक्ष को ही कहा था ठीक है, जो भी है आप समझ लो। आत्मा मेचक छे के अमेचक छे एवा विचार रोज मात्र क्रिया करवा थी ते साध्य सिद्ध थतू नथी, क्योंकि वह विकल्प विकल्पात्मक भूमिका है ना। परंतु दर्शन अर्थात शुद्ध स्वभाव नु अवलोकन, अभी यहां देखो दर्शन के दो अर्थ लिए हैं, प्रतीति भी लिए और श्रद्धा अवलोकन भी लिए। दर्शन अर्थात शुद्ध स्वभाव नु अवलोकन, ज्ञान अर्थात शुद्ध स्वभाव नु प्रत्यक्ष जानपणु, अने चारित्र अर्थात शुद्ध स्वभाव में स्थिरता, तेमना थीज साध्यनी सिद्धि थाय छे, आज मोक्ष मार्ग छे, ते सिवाय बीजो कोई मोक्ष मार्ग नथी। व्यवहारी लोको पर्यायमा एटले भेदमा समझे छे, तेथी अहीं ज्ञान दर्शन चारित्रना भेद थी समझाव्यू छे। यानी व्यवहारी लोग जो होते हैं उनको डायरेक्ट कुछ हम आत्मा का अनुभव करो कहने से ध्यान में नहीं आता है, तो उनको भेद करके समझाएंगे तो वह समझते हैं, इसलिए यहां दर्शन ज्ञान चारित्र की बात ली है।
यानी आत्मा कैसा है समझने के लिए अलग अलग नयों से उसका वर्णन किया, प्रमाण क्या है, नय क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, कौन से आत्मा का अवलोकन करने से समय दर्शन होगा, ये सब बताया। तो ये समझने के लिए सारे विकल्पों की जरूरत थी। अब समझ में आ गए तो आ गए, तो आत्मा के अनुभव के नाम पर क्या करते हैं हम, विकल्प ही किया करते हैं, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ, ऐसा करने से आत्मानुभव होने वाला नहीं है ये। इसलिए वो कहा कि अभी इससे बस था, अलम कहा। बहुत जगह अमृत चंद्राचार्य ने अलम अलम बहु विकल्प है न ऐसा कहा है, ये विकल्प उनसे भी बस था, क्योंकि विकल्प तो प्राथमिक भूमिका में समझने के लिए, अभी हमें समझ में आ गया तो अभी स्वसन्मुख हो जाओ बस, अभी कुछ करने का नहीं है। प्रश्न हमें क्या होता है, अभी हम क्या करें, कुछ नहीं करें यही करें। क्या है ना, हाँ तो ये बात आई अभी, क्योंकि ये तो विकल्पों का विकल्प उठाते रहते हैं, तो हमें पहले ये नक्की करना है कि अभी विकल्प उठाने से तो काम नहीं होगा, अभी विकल्पों की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ख्याल है ना। तो यही बात यहाँ बता रहे हैं कि शुद्ध स्वभाव का अवलोकन करना है, उसका ज्ञान करना है, उसमें स्थिरता करनी है, ये तो समझाने के लिए तीन बातें करी, ऐसे तीन अलग अलग कुछ नहीं करना है, बस अभी जिसका स्वरूप नक्की किया है उसको जानते रहो, बस एक ही शब्द में कहेंगे।
आत्मनः, ये अभी हम पेज नंबर 19 पे आए हैं, श्लोकार्थ ऊपर प्रवचन लिखा है वहां से चालू करते हैं। आत्मनः मेचका मेचकत्वयो हो, आ आत्मा मेचक छे, भेद रूप अनेकाकार छे, तथा अमेचक छे, अभेद रूप एकाकार छे, शुं कहे छे के आत्मा अखंड ज्ञायक एक रूप वस्तु, ए तो निश्चय दृष्टि छे, अने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रनु पर्यायमा निर्विकारी परिणमन थवुं ए व्यवहार नयनो विषय छे। व्यवहार रत्नत्रयनी एटले महाव्रतादिनी महाव्रतादि शुभरागनी वात अहीं छे ज नहीं, ए प्रमाणे आत्मा मेचक अमेचक कहो। अहीं पहला तो एम कहूं के एक रूप वस्तु जे ज्ञायक भाव एनी सेवा करवी, एटले के एक आत्मा ने सेववो, ए निश्चय अने शुद्ध रत्नत्रय रूप पर्याय ने सेववी एम कहूं ए व्यवहार छे। आत्मा मेचक छे एवो जे विकल्प कर्ता कर्म अधिकार मा 142 गाथा मा गाथा पछी 20 कलशो मा एटले 70 थी 89 क्या है 89 जे कहूं के आत्मा निश्चय नहीं थी, एटले त्रिकाली शक्ति रूपे अबद्ध छे, शुद्ध छे, एक छे, पवित्र छे, अभेद छे, ए वस्तु तो एम ज छे, पन अबद्ध शुद्ध इत्यादि छे, एवो जे विकल्प તે વિકલ્પ કરવો એ વાત અહીં નથી લીધી, પણ એનો વિકલ્પ છોડવો એમ અહીં કહે છે. એટલે વિકલ્પ છૂટતા અભેદરૂપ શુદ્ધ પરિણમન થયું એ નિર્વિકલ્પ પરિણમનની વાત છે, તેને અહીં વ્યવહાર કયો છે. અભી ક્યાં કહેના ચાહતે દેખો, એ નીચે કે ઉપર છે તો ક્યાં હૈ? ઉન્હોને જો પહેલે દો લાઈન મેં બતાયા હૈ કે આગે કર્તા કર્મ અધિકાર મેં જો 142 નંબર કી ગાથા આયેગી વહાં ક્યા વિષય હૈ, વો વિષય કે હમે ઇન્ફોર્મેશન દે દી. અબ કહેતે કે વો બાત યહાં નહીં હૈ, તો યહાં ક્યા કહે રહે હૈ? તો નીચે સે દૂસરી લાઈન મેં કે કહેતે કે તે વિકલ્પ કરવો એ વાત અહીં નથી લીધી. અબ કહેતે પણ એનો વિકલ્પ છોડો એમ અહીં કહે છે. અભી હમને દેખા ના અલમ અતિ વિસ્તરે, અભી વો બાત અભી બંધ કરો, અભી મેચક અમેચક ઉસકે ચક્કર મેં મત પડો. અભી આપને નક્કી કિયા હૈ ના, વો તો કહેતે અભી ઉસમેં અધિક ઉલઝો મત, વિકલ્પો મત કરો, લેકિન આગે જાકે કહેંગે કે એસા એસા વિકલ્પ કરો, વો બાત ઉન્હોને યહાં બતાઈ હૈ. અબ કહેતે હૈ એટલે વિકલ્પ છૂટતા અભેદરૂપ શુદ્ધ પરિણમન થવું, તો વો વિકલ્પ છૂટે તો ક્યાં હોગા? નિર્વિકલ્પ હોગા. ઉસ નિર્વિકલ્પ પરિણમનની વાત છે, ઓર વહ જો નિર્વિકલ્પ પરિણમન હૈ વહ ભી આત્મા સે જુદી બાત હૈ ને, પર્યાય મેં હો રહી ને, તેથી એને અહીંયા વ્યવહાર કયો છે. યાને જો ત્રિકાલી આત્મા હૈ વહ નિશ્ચય હૈ, ઓર ઉસકા પર્યાય મેં વેદન હૈ વહ વ્યવહાર હૈ, ક્યોંકિ આત્મા ઓર પર્યાય એસા ભેદ હો ગયા વહાં પર, તો યે તો અધ્યાત્મક કા વ્યવહાર નહીં, આગમ કા નહીં. અભી વો ઉસમે હમ ચક્કર મેં નહીં ફસતે હૈ, લેકિન યે બાત હૈ. ઇસલિયે કહેતે હૈ વિકલ્પ છૂટતા અભેદરૂપ શુદ્ધ પરિણમન થવું, યાને ક્યા હો ગયા? સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કી પ્રાપ્તિ હોઈ એ નિર્વિકલ્પ પરિણમનની વાત છે, તેને એટલે નિર્વિકલ્પ પરિણમનને અહીં વ્યવહાર કયો છે. ક્યું ભેદાત્મક હૈ ના, ઇસલિયે આત્મા અમેચક કયો છે એ નિર્મળપનાને, અભેદપનાને, એકપનાને, શુદ્ધપનાને નિર્મળ અમેચક કયો છે એ વિકલ્પ વિનાની નિર્મળતાની વાત કરી, અને પર્યાયમાં જે નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગનું ત્રણપણે પરિણમન, એમાં એક પ્રતીતિરૂપ ભાવ, એક જાણવારૂપ ભાવ, એક સ્થિરતારૂપ ભાવ, એમ ત્રણ સ્વભાવ ભિન્ન કયા. અભી યહાં કભી કભી દર્શન કા કાર્ય વો શ્રદ્ધા ગુણ કી અપેક્ષા સે કરતે હૈ, કભી કભી દર્શન ગુણ કી અપેક્ષા સે કરતે હૈ, ખ્યાલ મેં આયા? તો યહાં યહાં તો ઉન્હોને પ્રતીતિરૂપ ભાવ લિયા હૈ. અબ કહેતે વહાં પ્રતીતિ ભી હૈ ઓર અનુભવન ભી હૈ, સામાન્ય અવલોકન ભી હૈ, દોનો બાતે બતાયેંગે. નીચે સે દૂસરી લાઈન, ત્રણપણાનું લક્ષ્ય કરવું એ અશુદ્ધતા છે, અને ત્રિકાળી એકાકારનું લક્ષ્ય કરવું તેનું નામ શુદ્ધતા છે. અહીં તો લોકમાં હજી બધા વાંધા, વ્યવહાર એટલે શુભરાગરૂપ દયા દાન ભક્તિ વ્રતાદિના પડ્યા છે, એટલે વાંધા વ્યવહારના પડ્યા છે. એ ક્યાં બતાતે? લોક અભી ભી શુભ ભાવમાં હિ અટકે પડે હૈ, ઉસસે બહાર નિકલના નહીં ચાહતે હૈ. એને સાધન કહો, એટલે આ શુભ ભાવોને સાધન કહો, નહીં તો એકાંત થઈ જાય એમ કેટલાક કહે છે. ભાઈ એ સાધન તો, યાને શુભ ભાવ યહ સાધન તો અસદભૂત વ્યવહાર નહીંથી કહ્યું છે. શું કહ્યું એ? કે નિશ્ચય સાધ્ય અને વ્યવહાર સાધક, એમ પણ 85 કાય ગાથા 172માં આવે છે. ત્યાં તો પ્રજ્ઞાછીણીથી રાગને અને આત્માને ભિન્ન પાડી એને, અને પ્રજ્ઞાછીણી દ્વારા જેને ભગવાન આત્માને સાધકપણે પરિણામ આવ્યો, તેને તે કાળે રાગની મંદતા કેવી હોય એ બતાવવા એને વ્યવહાર સાધનનો આરોપ આપ્યો છે. સમજાણું કાંઈ? યાને વહાં 85 મેં 172 નંબર કી ગાથા મેં એસા બતાયા કે નિશ્ચય સાધ્ય अने व्यवहार साधक, तो वह भी उपचार का कथन है। कहीं कहीं ऐसा भी शास्त्र में कथन आएगा कि यह जो शुभ राग है वह परंपरा मोक्ष का कारण है, तो उससे ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि शुभ राग करने से धर्म होगा या मोक्ष होगा। ये तो जब जीव ये मोक्ष मार्ग पर चलता है और जब अपने स्वरूप में एकाग्र नहीं रहता है, शुद्धोपयोग में नहीं रहता है, तो उसे किस प्रकार के शुभ भाव आते हैं, इसलिए उनको भी कहा कि उसके कारण इसको यह मोक्ष मार्ग है करके। यानी वह मोक्ष मार्ग का हेतु है, परंपरा मोक्ष का हेतु है, ऐसा कहा। तो ये कहना तो कैसा है कि जैसा आ उपचार से, जैसा आपने बादाम देखा है कैसा होता है, छिलके सहित बादाम को क्या कहते हैं आप लोग? छिलका यानी समझो ऊपर जो कवर होता है, बादाम कहते हैं क्या? दूसरा कुछ कहते हैं? बादाम कहते हैं। और वो जो झाड़ से वो बादाम निकलता है उसको क्या कहते हैं? बादाम कहते हैं। ये आम है, ये बादाम है, ये काजू है, ये काजू का झाड़ है, ये आम का झाड़ है, ऐसा हम कहाँ बोलते हैं? ये बादाम का बगीचा है या ये सुपारी का बगीचा है, ऐसा बोलते हैं ना? तो झाड़ को भी बादाम कहते हैं, वो छिलका सहित जो है उसको भी बादाम बोलते हैं, अंदर जो मीगी है बीज उसको भी बादाम कहते हैं। तो असली बादाम कौन सा? वो छिलका की हम अगर शीरा बनावे तो अच्छा लगे कि नहीं? नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको बादाम कहते हैं। क्यों? कि वो मीगी के साथ रहता है इसलिए उसको उपचार से। वैसे ये शुद्ध परिणाम जीव के है, उसके साथ में शुभ परिणाम भी है, इसलिए उसको भी मोक्ष का कारण कहा है उपचार से। अभी समझो आपके घर में कोई मेहमान आया हो, तो मेहमान के साथ उसका एक मेहमान आया हो तो वो भी अपना मेहमान कहा जाता है। नहीं नहीं, तुम खाली आ सकते हो, उसको मत लाना, ऐसा तो हम नहीं बोलते ना, ख्याल में है ना? तो ऐसा ये उपचार है। कौन सा? तो आपने अंडरलाइन किया ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये क्या लिखा तुमने, कहा अंडरलाइन किया? मैं बताता हूँ, निश्चय साध्या ने व्यवहार साधक, ये गलत है, ऐसा आगे जाके बताने वाले हैं। तुम ऐसा मत समझना कि मैं इधर ही देखता हूँ, मैं तो चारों ओर देखता हूँ। क्या? कि मैं इसलिए बता रहा था, ये उपचार का कथन है, ऐसा आगे बताया। देखो एम 85 का 172वां आवे छे, अभी क्या कहते हैं? प्रज्ञा छिन्नी, छिन्नी समझते आप? वो ऐसा लोहे का होता है, उसको ऐसा मारेंगे तो पत्थर के दो टुकड़े होते हैं। तो प्रज्ञा ने बुद्धि ज्ञान, और ज्ञान रूपी जो छिन्नी है, उस छिन्नी को हम क्या करते हैं? देखो पत्थर तोड़ते हैं ना, तो क्या करते हैं वो जो तोड़ने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? ये पत्थर जो अभी संगमरमर के जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं कि जहाँ कहीं सांध होती है, सांध यानी कि गुजरात में त्राड़ के वह, तो वहाँ पर वो छिन्नी डाल के उसको जोर से पटकते हैं, तो बिल्कुल ऐसे पूरे पहाड़, मतलब ये बड़े पार्ट पार्ट के पार्ट ऐसे बाहर निकलते हैं पत्थर के। वैसे यहाँ आपने में क्या है? राग है, वही ज्ञान है, और ज्ञान और राग एक में जैसे लगते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में भी एक त्राण है, सांद है। तो जो ज्ञानी होता है वो प्रज्ञा रूपी छिनी यानी प्रज्ञा छिनी को उस सांद में रखकर जोर से प्रहार करते कि मैं भिन्न हूं और ये राग भिन्न है। तो राग से भिन्न अपना अस्तित्व उसके ख्याल में आता है। तो इसलिए यहां क्या कह रहे, देखो निश्चय साध्या ने व्यवहार साधक एम 85 का में आवे छे, पन त्या तो प्रज्ञा छीनी थी, यानी अपने ज्ञान से जिसको छीनी का आरोप किया है, उपमा दी है, राग ने यानी आत्मा ने भिन्न पाड़ी, अने प्रज्ञा छीनी द्वारा जेने भगवान आत्मा ने साधक पने प्रणमाव्यो, तेने ते काले रागनी मंदता केवी होय ए बतावा एने व्यवहार साधन नो आरोप आप्यो छे। समझाणू काई? अभी आगे बात सुनना। साधन नु कथन बे प्रकारे छे, साधन बे प्रकारे नथी, मोक्ष मार्ग नु निरूपण एटले एनु वर्णन एनु कथन बे प्रकारे छे, पण निश्चय अने व्यवहार एम बे मोक्ष मार्ग नथी। तो यहां जो कहा गया है कि निश्चय साध्य अने व्यवहार साधक, ये भी निमित्त का कथन है। जैसे घड़ा तो एक ही होता है, कौन सा? मिट्टी का घड़ा। लेकिन जब हम उसके साथ में घी रखते हैं तो उसको भी घी का घड़ा कहा जाता है। हा? देखो देखो, सिर्फ घी होगा तो उसको घड़ा नहीं कहेंगे, या सिर्फ घड़ा होगा तो उसको घी का घड़ा नहीं कहेंगे। अरे उस घड़े ने तो अपनी पूरी लाइफ उसके लिए समर्पित की है, क्योंकि उसने पहले पहले घी डालो तो वो सब घड़ा घी एब्सॉर्ब कर लेता है। ख्याल में? तो आपने 1 किलो डाला होगा तो आधा किलो रह जाएगा, इतना खत्म कर लेता है। और बार बार उसमें घी रखते हैं रखते हैं तो फिर बाद में वो घी पीना बंद कर देता है। जैसा हम भी बचपन में बहुत घी खाते हैं, और यहाँ हार्ट की बीमारी आई तो अरे लुखी रोटी आपो ये नीचे। ख्याल में? तो उसको घी का घड़ा कब कहते हैं? कि जब वो घी से परिपूर्ण है, लेकिन है तो असल में कौन सा? मिट्टी का ही घड़ा है। वैसे यहां साधन तो अपनी वितरागी पर्याय ही है, लेकिन वहां राग भी साथ में रहता है। परिपूर्ण वितरागता तो आई नहीं है, साथ में कुछ ना कुछ प्रकार का राग है। इसलिए उस राग को वो बादाम के छिलके के जैसा उपचार से भी मोक्ष मार्ग कहेंगे, या मोक्ष मार्ग का साधक कहेंगे। ये बात यहां बताना चाहते हैं। अब इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि साधन नु कथन बे प्रकारे छे, कि एक निश्चय साधन और एक व्यवहार साधन, परंतु साधन तो एक ज हुए। ऐसा कहते हैं मोक्ष मार्ग का निरूपण भी दो प्रकार से किया जाता है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। परंतु मोक्ष मार्ग दो नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। मोक्ष एक ही रीति से प्राप्त किया जाता है। कथन दो प्रकार से आएंगे कि एक भक्ति का मार्ग है, सुनना, भक्ति का मार्ग भी है वो, पर वो भक्ति किसकी? हाँ, ये अभी आएगी बात। अभी तो हम 16 में आए और 15 गाथा जाने दो, वो बात आने वाली। देखो, पहले हम जब जयपुर गए थे तब वहां एक विषय था, भक्ति से आत्मा की प्राप्ति। तो ये डिबेट रखते हैं ना कि एक कहेगा ऐसा, एक कहेगा नहीं, और एक कहेगा हाँ। तो पहले बोले ये कैसा हो सकता है भक्ति से आत्मा की प्राप्ति कहे, क्योंकि हम तो एकदम नव मुसलमान थे ना, नव मुसलमान नहीं समझे, जो नया नया मुसलमान बनता है वो दिन में 9 बार नमाज पढ़ने जाता है। फिर बाद में हमारे जैसा जूना हो गया तो 1 बार भी नमाज नहीं पढ़ता है। तो नव मुसलमान यानी जो नया नया है। वैसे हम तो वहां गए थे जयपुर में, जरा ताजा ताजा दम से, वहां वह भक्ति से आत्मा की प्राप्ति है। बोला कैसे हो सकता है ऐसा, ये क्या ऐसा विषय रखते है, ये है वो ठिम 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 ठिम। फिर जब समय सार 31 गाथा का रेफरेंस आया और वहां बताया उन्होंने कि स्व भक्ति यानी निज स्वरूप में एकाग्र होना वही स्व की भक्ति है। यह जीव तो पर की भक्ति नहीं कर सकता है, क्यों? कि पर तरफ गया तो उसके राग होगा, और राग भक्ति यह भक्ति नहीं है, वह तो हिंसा है। किसकी? स्व की। भाई तुम स्व में नहीं जा रहे हो तो स्व की हिंसा हो रही है, ख्याल में है? तो काहे की भक्ति? तो ये निज भक्ति, यह निश्चय भक्ति, और जब निज भक्ति यानी स्व में एकाग्रता नहीं होगी तब 5 परमेष्ठी की भक्ति वह व्यवहार भक्ति। और जिसके निज भक्ति का पता ही नहीं है, 5 परमेष्ठी को ही नमस्कार करता है, तो वह तो व्यवहाराभास भक्ति है। और जो 5 परमेष्ठी को छोड़कर अन्य की भी भक्ति करता है तो उसके तो क्या कहने। यानी आज कहाँ गए तो कौन सा वो शिरडी का साई बाबा गए, आज कहाँ गए तो तुम्हारे वो किधर वो बाल कटवाते ना, तिरुपति बालाजी ये काय की भक्ति है, ये तो गड़बड़ी भक्ति है, वो भक्ति नहीं है, ये तो मिथ्यात्व का महापाप है, महापाप। ये लोगों की समझ में नहीं आता है कि जिनेंद्र भगवान को जो माने वो अन्य भगवान को भी मानता है तो उसके मिथ्यात्व का महापाप है, ऐसी बात है। तो ये क्या बताएं अभी कि साधन बे प्रकारे छे, साधन नु कथन बे प्रकारे छे, साधन बे प्रकारे नथी, मोक्ष मार्ग नु निरूपण एटले कथन बे प्रकारे छे, पर निश्चय ने व्यवहार एम बे मोक्ष मार्ग नथी। ए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निश्चय मोक्ष मार्ग नु साचु परिणमन जे सत्य व्यवहार छे तेनी आई वात छे। अभी और एक इसमें एक नई बात बताई है, दूसरी बार बताई है, कह रहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये जे साचु परिणमन छे ते सत्य व्यवहार छे। क्या कहा कि जो निर्मल पर्याय है उसको तीन रूप से बताए ना, तो वो आत्मा का अनुभव वो निश्चय, और ये तीन प्रकार से कथन करना वो उसका सत्य व्यवहार, और देवगुरु शास्त्र का जो कोई मतलब राग है वो व्यवहार रत्न रहे वह झूठा। देखो भाई यहाँ तो गुरुदेव तो ऐसी कमाल करते हैं कि पहले समझ में आने में टाइम लगता है और समझ में आने के बाद तो बिजली चमकती कि ओहो आज तक मैंने क्या माना था। देखो ये व्यवहार काय का बताए, देखो देखो तो फिर से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निश्चय मोक्ष मार्ग नु साचु परिणमन कयो के जे सत्य व्यवहार छे तेनी आई वात छे। वस्तु आत्मा निर्मल एकाकार तेने त्रण रूपे, एक प्रतीति रूपे, एक जानवा रूपे अने एक स्थिरता रूपे एम त्रण स्वभावपने केवो, कोने आत्मा ने ते केवो छे, निर्मल छे, एकाकार छे, एने अनेकाकार केवो ए मेचक छे, अने वस्तु एक स्वभाव अमेचक छे। आम आत्मा ने मेचक अमेचक कहो खरो तथा अमेचक ने शुद्ध आदरणीय कहो छे, पन हवे कहे छे आ वस्तु अमेचक निर्मल शुद्ध छे अने आ पर्याय भेद मेचक मलिन छे एवो विकल्प छोड़ी दे। अभी यहां तो अलम बस्त हो ऐसा बोलते ना राजमल जी कलष्टिकामां एम लीधु छे के ये राजमल जी जो है उन्होंने उनका भावार्थ लिखा था समयसार का। श्रुत ज्ञान थी आत्मस्वरूप विचारता घना विकल्पो उपजे छे। क्या कहा, आत्मस्वरूप के बारे में हम बहुत सोचते हैं तो बहुत विकल्प उत्पन्न होते हैं। आगळ पाछू 143 नी जे कलष्टिका मां लीधु छे यानी और दूसरा रेफरेंस दे रहे हैं। एक पक्षती विचारता यानी एक तरफ से एक एंगल से विचारता आत्मा अनेक रूप छे, बीजा पक्षती विचारता आत्मा अभेद रूप छे, आम विचारता थका तो स्वरूप अनुभव नथी। ये 143 नंबर की जो गाथा है उसके ऊपर ये टीका लिख 143 कलश टीका में कलश
राजमल जी ने कलशों के ऊपर टीका लिखी। बरोबर
उन्होंने कलशों के ऊपर तो वहाँ लिखते हैं कि एक तरफ से मतलब एक बाजू से या एक एंगल से या एक पक्ष से वह अनेक रूप है और दूसरे पक्ष से विचार करते हैं तो आत्मा एक रूप है अभेद रूप है। तो ये हम जब विकल्प में अटके हैं आम विचारता थका थर्ड लाइन तो स्वरूप अनुभव नथी यानी हम विकल्प में ही अटके रहे तो जो स्वरूप का अनुभव अपने स्वभाव का अनुभव आत्मानुभव निर्विकल्प अवस्था नहीं होती ऐसे वहां पर वे कहते हैं। एटले हवे आई कहे छे के आत्मा मेचक छे अमेचक छे एवी चिंतया एव अलम चिंता थी बस थाओ। बनारसी दासकृत समयसार नाटक में આ 19મા કળશના હિન્દીમાં એક દેખીએ જાણીએ છંદમાં વાત આવી ગઈ કાલે, 18મા કળશના પ્રવચનમાં આવી ગઈ છે, વો હમને દેખા થા ના, અગર આપકો દેખના હો તો ફિર સે દુબારા દેખ લેતે હૈ, હા 20 પૃષ્ઠ 18 પૃષ્ઠ પે હૈ, યે ઉપર સે તીસરી લાઇન મે દેખો, એક દેખીએ જાણીએ રમી રહીએ ઇકઠર, યાને એક એસા જો સ્વરૂપ મેરા હૈ ઉસકો દેખો જાનો ઓર ઉસી મે એકાગ્ર હો જાઓ, સમલ વિમલ ન વિચારીએ યહી સિદ્ધિ નહીં ઓર, યાને ઇકઠર કા અર્થ એક હી સ્થાન મે રહે, એક હી મે સ્થિત હો જાય, ઓર સમલ વિમલ યાને વો મલિન હૈ યા શુદ્ધ હૈ એસા ભી મત વિચાર કરો, યહી સિદ્ધિ નહીં ઓર, ઓર ઇસી સે ઉસકા અવલંબન યાને ઉસકા અનુભવ હોગા, અન્ય કિસી કારણ સે નહીં. યે દેખીએ સ્વામીજી કા ઇતના અલગ અલગ શાસ્ત્રો કા અભ્યાસ થા કે વો બોલતે બોલતે કોન સે કલશ મે અપને કોન સે આજ પંડિત ને કહા કિસમે ક્યા લિખા હૈ કોન સે નંબર કા યે સારા વો બિલકુલ ઉનકે મુખદગત થા. તો અબ કહેતે હૈ એક દેખીએ જાણીએ, નીચે સે પાંચમી છઠ્ઠી લઈને છંદમાં આ વાત આવી ગઈ કાલે 18મા કળશના પ્રવચનમાં આવી ગઈ છે, આ દ્રવ્ય સ્વભાવ અને આ પર્યાય સ્વભાવ, આ અમેચક અને આ મેચક, આ શુદ્ધ અને આ અશુદ્ધ, આ અભેદ અને આ ભેદરૂપ, એવા વિકલ્પ કરવા છોડી દે. આવા વિકલ્પમાં રહેવાથી કાંઈ આત્મજ્ઞાન નહીં થાય, અનુભવ નહીં થાય, અનુભવમાં એ વિકલ્પને કાંઈ અવકાશ નથી, એને વહા ઉસકો કોઈ જગહ હી નહીં હૈ, મતલબ વહા વો હોઈ નહીં સકતા, હોના ભી નહીં ચાહીએ, માટે એવી ચિંતાથી બસ થાવ. હવે કહે છે સાધ્ય સિદ્ધિ હિ, સાધ્યના મોક્ષની પર્યાયને સાધવી તેની સિદ્ધિ તો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર હિ, દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રથી જ છે. આ તો ત્રણ ભેદથી સમજાવ્યું છે, બાકી આશ્રય તો એકનો જ કરવાનો છે, ત્રણનું સેવન એમ નથી, સેવન તો એક આત્માનું જ છે. વો એક આત્મા કો સમજાને કે લિયે તીન પ્રકાર સે બતાયા ગયા, લેકિન હમે આત્મા કા એક હૈ આત્મા કા ચિંતન મનન ઓર ઉસી મે એકાગ્રતા હોની હૈ. પાઠ 16મી ગાથામાં તો એમ કહે છે, પાઠમાં એની 16મી ગાથામાં, દંશન નાન ચરિતાણી સેવિદવાણી, એટલે પર્યાયની સેવા કરવી, એ તો વ્યવહારી લોકો પર્યાયના ભેદથી સમજે. પર્યાય અને આ કોનસી સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કે, વ્યવહારી લોકો પર્યાયના ભેદથી સમજે છે, તેથી અહીં દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રના ભેદથી સમજાવ્યું છે. સેવના ત્રણની નથી, યાને અમે તીન કા સેવન કરને કા નહીં હૈ, સેવના એકની એટલે અખંડ એકરૂપ ન્યાયકની છે. આહા આવો માર્ગ સમજાય છે કાંઈ, દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એ ત્રણથી જ સિદ્ધિ છે. જોયું, ત્રણ ભાવ કહ્યા ને, બીજી રીતે નથી, એમાં અનેરા દ્રવ્યોને સહારો નથી, એક સ્વદ્રવ્યનો જ સહારો છે. એ ક્યાં કહેના ચાહતે હૈ, જબ આત્મા કા અનુભવ હોગા એમાં અનેરા દ્રવ્યોને સહારો નથી, યાને વહા કોઈ દૂસરા ઉસે કોઈ વો કાર્ય કરા દે ઉસકી મદદ સે આત્મા કા અનુભવ હો જાય, એસી બાત નહીં. તો હમે કિસકા આશ્રય લેના હૈ, અનેરા દ્રવ્યોનો અસહારો નથી અને કિસકા દૂસરે કા આશ્રય નહીં હૈ, એક સ્વદ્રવ્યનો બીજાનો પણ નહીં સહારો છે. યાને જબ આત્મા કા અનુભવ હોતા હૈ તો અન્ય કોઈ ભી અન્ય દ્રવ્ય કહો, નિમિત્ત કહો, સંયોગ કહો, કોઈ ભી બાત વહા કાર્યરત નહીં હોતી. અરે યહાં તક કે વો શુભ પરિણામ ભી વહા કોઈ તક મતલબ મદદગાર નહીં હૈ. એમાં ત્રણ ભેદ પડ્યા, સ્વદ્રવ્યનો સહારો કહ્યો ને, એમાં ત્રણ ભેદ પડ્યા, પણ પરદ્રવ્યનો કોઈ સહારો નથી. દેવશાસ્ત્ર ગુરુની મદદ કે ભક્તિનો વિકલ્પ એ સહારો મોક્ષ માર્ગમાં છે જ નહીં. ક્યાં કહા, પરદ્રવ્યનો કોઈ સહારો નથી, દેવગુરુ શાસ્ત્રની મદદ કે શક્તિનો વિકલ્પ એ સહારો મોક્ષ માર્ગમાં છે જ નહીં. આવો અર્થ भारे कठन पड़े मानस ने, पन शू था है। मैंने एक दफे दो चार दिन पहले आपको बताया था, शायद आपको याद, दो चार नहीं बहुत दिन हो गए होंगे, कि हमने वहां माटुंगा में वो क्या था, हमें स्टडी सर्कल का प्रोग्राम था, तब हमको बुलाया गया था। हाँ जो भी होगा, हाँ हाँ, तब हमने प्रश्न पूछा था कि ये जो पंच परमेष्ठी है वो आत्मा में साधक है या बाधक है। हाँ तो उन्होंने कहा तो कुछ नहीं है, और वहां तो कितने सालों से आने वाले पढ़ने वाले और स्वयं को स्कॉलर समझने वाले कोई उत्तर नहीं दे पाया। कोई कहता बाधक है, कोई कहता साधक है, कोई कहता किसी अपेक्षा से साधक है, कोई कहता है दोनों है। ऐसा वास्तव में क्या है, यहां तो क्या लिखा है देखो, देवगुरु शास्त्र नी मदद के भक्ति नो विकल्प ए सहारो मोक्ष मार्ग मा छेज नहीं।
पंच परमेष्ठी तो साधक बाधक नहीं है, तो पंच परमेष्ठी का राग क्या है, साधक है के बाधक है, ये भी प्रश्न वहां पूछा था। पंच परमेष्ठी तरफ का अपना राग वो साधक है कि बाधक है, हाँ। वो निश्चित करना पड़ेगा ना पहले। पंच परमेष्ठी तो परद्रव्य है, परंतु पंच परमेष्ठी तरफ का अपना जो राग है वो बाधक आश्रव तत्व है वो।
यानी पंच परमेष्ठी स्वयं मतलब हमारे लिए तो गेय है, ख्याल में आया ना, तो गेय है, उसको हम अनुकूल या प्रतिकूल, साधक या बाधक मानते हैं, तो ये हमारा ही भ्रम है, वो तो हमारे लिए कोई है नहीं। जब स्वयं में अपने को एकाग्र होना है, अरे ये जो इधर जो शरीर है वो भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो बाहर के सारे लोग क्या करने वाले हैं, ख्याल में है?
तो ये क्या हम ऐसा मानते हैं कि अभी पहले हमें इतनी भक्ति नहीं आती थी, अब कौन सच्ची भक्ति आती है, बहुत सच्ची, किसी अपेक्षा के बिना भक्ति आती है तो हम कुछ बढ़ गए ऐसा लगता है कि नहीं लगता? हम कहाँ गए थे, वो अकोला में गए थे, वहाँ एक भाई साहब थे, वो कहते थे पहले मुझे ऐसा नहीं भक्ति, ऐसी भक्ति उमड़ती कि मुझे नाचने का मन करता है, तो देखो मैं थोड़ा आगे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। यानी उसमें इसको ऐसा कुछ लगता है कि मैं कुछ और बहुत नजदीक आ गया मोक्ष मार्ग के, गुरु की भक्ति आ गई ना अभी, तो अभी मुझे मार्ग मिलेगा ऐसा लगता है।
ये मैं सब जानता हूं, मैं नागपुर के पंचकल्याणक में गया था, तो नागपुर के पंचकल्याणक में क्या होता है कि राजा रानी इंद्र इंद्राणी ऐसे इनकी सभाएं चलती हैं, और उस समय तो मैं फोटोग्राफी करता था तो मैं वीडियो निकालता था, तो जब तक मैं लाइट चालू रखूं तब तक तो लोग नाच नाच के जोर जोर से, और वो भी भगवान सामने उधर विराजमान है, उनकी तरफ पीठ करके कैमरे की तरफ मुंह करके खड़े होते थे। तो जब वहां से अभी बस हो गया ऐसा बताना था, तो वहां से अभय कुमार जी मेरे को इशारा करते थे, तो मैं लाइट बंद कर देता था, सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाते।
वो तो आपकी भक्ति कर रहे थे,
स्वयं की भक्ति कर रहे थे कि मेरे को सारी दुनिया जाने, देखो मैं कितना होश हवास खो के नाच रहा हूं, पर किसके लिए, पब्लिक के लिए, भगवान के लिए नहीं, ऐसी बात है।
वो शरीर की फोटो खींचे जा रही थी ना, तो शरीर मैं हूँ वहां पड़ा था सब पूरा पूरा।
वो तो अपना अभी बहुत हम आगे बढ़ गए, यहाँ तो ये बताना चाहते हैं कि जब स्व का आसरा लेते हैं जीव, यानी स्व का अनुभव करते हैं, एमा त्रण भेद पड़िया, भले वहां तीन भेद हुए पन परद्रव्य नो कोई सहारो नथी। अभी जाने दो, आवो अर्थ भारे, आवो अर्थ भारे कठन पड़े मानस ने, तो ये मानस कौन है, ख्याल में है ना? हाँ,
देखो यहाँ कोई भक्ति का निषेध नहीं है, सम्यक दृष्टियों को भी, जैसे सौधर्म इंद्र पंच कल्याणकों में आते हैं, वो एक्चुअल इंद्र की बात चल रही है, ये तो यहाँ जो पंच कल्याणकों में पैसे देकर बनते उसकी बात नहीं है,
जो पैसे फेंकते हैं ऐसे इंद्रियों की। इंद्रों की बात है,
तो इंद्र आते तो वे भी वहाँ भगवान के सामने नाचते हैं, तो उनके भक्ति का निषेध है या नहीं? नहीं, जब क्योंकि वहाँ तो निश्चय है और निश्चय के साथ वाला ऐसा व्यवहार भी देखने में आता है, होता भी है, तब तो उसको व्यवहार कहेंगे। पर किसी को अभी पता ही नहीं है क्या निश्चय होता है और बस भक्ति के रंग में ही रंग जाते हैं और कहते कि हम कुछ आगे बढ़े हैं या इसी से मेरा कल्याण होगा या मुझे जल्दी ये मार्ग मिलेगा, तो उनके लिए यहाँ निषेध हो रहा है। नहीं तो कोई समझे कि बिल्कुल वह अभी भक्ति करनी नहीं है क्योंकि उसे ऐसा कुछ दोष लगता है, इसी बात यहाँ नहीं हो रही।
ये क्या है, पर से मेरा कुछ फायदा नुकसान होगा ऐसा मानने वाला जीव ही पर में आसक्त होता है और पर के तरफ दृष्टि मतलब केंद्रित करता है। यहाँ तो समझा रहे कि तू स्वरूप में एकाग्र हो तब अन्य तुझे कोई भी मददगार नहीं है, ऐसा समझेगा तो पर के तरफ से तेरी दृष्टि हटेगी और अपने स्वभाव में तू अधिक से अधिक जल्द से जल्द स्वभाव को प्राप्त करेगा, उसमें लीन होकर वो स्वभाव को प्राप्त करेगा। पर तो इसलिए कह रहे हैं कि आवो अर्थ भारे कठिन पड़े मानस ने, यानी जिनका अभ्यास नहीं है ऐसे जीवों को ये बात थोड़ी सी कठिन लगेगी, कठिन लपड़छे। नच अन्य था आ अनेकांत करियो, एटले आनाथी थाय अने आनाथी पन थाय एम अनेकांत नथी। तो कैसा है कि वस्तु स्वरूप जे छे तेनी सेवना करता, यानी वस्तु स्वरूप यानी अपना आत्मा जिस प्रकार का जिस तरह का है उसकी सेवना यानी उसी में एकाग्र होने से आ त्रण पर्याय उत्पन्न थाय छे। एने भेदती समझाव्यूं के त्रणनी सेवना करवी एनाती सिद्धि छे, बीजी रीते सिद्धि नथी। यानी यहाँ उपदेश क्या दिया गया, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करो, वहाँ समझता है ना, आत्मा को प्राप्त करो कहने से ख्याल में नहीं आएगा, इसलिए उसके भेद करके उसको प्राप्त करो ऐसा कहा तो वह व्यवहार हो गया। और फिर समझा रहे हैं कि वह एक ही रीत है, अन्य कोई बीजी रीते नहीं सिद्धि थती नहीं, अने एनो सरवाळो तो एक ज छे के एकाकार आत्मानी सेवा करवी। भावार्थ उपरनु प्रवचन 16-17-18 आ त्रण कळशो बहु ऊंचा हता, काले घणी वात आवी गई हती, हवे आजे अहीं आ भावार्थमां कहे छे आ आत्माना शुद्ध स्वभावनी साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष ते साध्य छे, साध्य छे ध्येय नहीं। अभी इसमें क्या फर्क करते देखेंगे। ध्येय ध्येय तो त्रिकाळी एक रूप न्यायक भाव छे, आई प्रकट करवानी अपेक्षा है केवल ज्ञाननी मोक्ष पर्याय ने साध्य कही। साक्षात प्राप्ति एटले आत्मानी उपलब्धि, जेवा स्वभावे आत्मा छे तेवा परिपूर्ण स्वभावनी पर्याय में प्राप्ति ते आत्म उपलब्धि छे ए मोक्ष छे अने ए साध्य छे। आत्मा मेचक छे के अमेचक छे एटले के त्रण पर्याय रूपे परिणमेलो छे के एक रूप छे एवा विचारोज कर्या करवाती साध्य सिद्ध थतु नथी। इसलिए भाई रुक जाओ बस करो ऐसा कह रहे ना, आत्मा पर्याय मा त्रण प्रकारे परिणमेलो छे एवा भेद रूप विचारो अनेकाकार पणु छे अशुद्ध पणु छे अने त्रिकाळी वस्तु आ भेद छे एक स्वभावी छे अमेचक छे निर्मल शुद्ध छे एवो विचार पण भेद विकल्प छे। तेथी एवा विचार मात्र कर्या करवाथी साध्य सिद्ध थतु नथी, एटले के केवल ज्ञाननी प्राप्ति अर्थात जेवो आत्मा छे तेवी पर्यायमां उपलब्धि एटले एनी प्राप्ति आवा विचारोथी थती नथी, परंतु दर्शन अर्थात शुद्ध स्वभावनुं अवलोकन अने प्रतीति, यहां दोनों को लिया बन्ने भाव, तो उसमें दर्शन में दोनों को लिया, दोन यानी कौन, एक दर्शन गुण और एक श्रद्धा गुण। ज्ञान अर्थात शुद्ध स्वभाव नु प्रत्यक्ष जाणपणू अने चारित्र अर्थात शुद्ध स्वभाव में स्थिरता તેમનાથી જ સાધ્યની સિદ્ધિ થાય છે. દર્શન એટલે ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વભાવનું અવલોકન, એમાં શ્રદ્ધા અને દેખવું બંને ભાવ આવ્યા. જ્ઞાન એટલે શુદ્ધ સ્વભાવનું પ્રત્યક્ષ જાણપણું, એમાં સ્વસંવેદન જ્ઞાનની વાત છે. સ્વ કેતા પોતાથી સમ ઉસ્કા અર્થ નામ પ્રત્યક્ષ વેદન, અને સ્વસંવેદન એટલે પોતાથી પોતાને પ્રત્યક્ષ વેદવું, એનું જ નામ સમ્યક જ્ઞાન છે. વેદવું કા અર્થ વેદન કરના, અનુભવ કરના, જાણના, એક અર્થ છે. શાસ્ત્ર જ્ઞાન અને બીજા બાહ્ય જ્ઞાનની અહીં વાત નથી. વ્યવહાર જ્ઞાન, શાસ્ત્રનું વિકલ્પ વાળું વ્યવહારનું જ્ઞાન, એ કાંઈ સમ્યક જ્ઞાન નથી. ફક્ત ભગવાન આત્મા શુદ્ધ એક સ્વભાવી છે, તેનું પર્યાયમાં સ્વસંવેદન, એનું નામ સમ્યક જ્ઞાન છે. અને ચારિત્ર કહ્યું છે ને કે એક દેખીએ જાણીએ રમી રહીએ એક ઠર, ઠર એટલે સ્થાન, એટલે એક જગ્યા આરામસે બેઠે હોય, મતલબ એક શાંત એકાગ્ર ચિત્ત હોકર, તો ઉસકો એક ઠાન એક સ્થાન કહા ગયા. જે વસ્તુ અખંડ અભેદ છે એને દેખવી જાણવી અને એમાં જ વિશ્રામ લેવો. આહા, શુદ્ધ સ્વભાવમાં ધ્રુવધામમાં સ્થિરતા, વિશ્રામ વિશ્રામ વિશ્રામ, તે ચારિત્ર છે. તેમનાથી જ સાધ્યની સિદ્ધિ થાય છે. જુઓ, જ શબ્દ લીધો છે ને, તેમનાથી જ, એને આત્મા મેં સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કી પ્રાપ્તિ સે હિ સાધ્યની સિદ્ધિ થાય છે. આનાથી થાય અને વ્યવહારથી પણ થાય એમ અહીં ના લીધું, એકાંત કહ્યું કે તેમનાથી જ સાધ્યની સિદ્ધિ થાય છે. હવે કહે છે આ જ મોક્ષ માર્ગ છે. ત્રિકાળી ભગવાન એક સ્વરૂપ, એક રૂપ સ્વભાવના દ્રષ્ટિ જ્ઞાનને એમાં રમણતા, એ તે એક જ મોક્ષ માર્ગ છે. મોક્ષ માર્ગ બે નથી. પંડિત શ્રી ટોડરમલજીએ કહ્યું કે મોક્ષ માર્ગનું નિરૂપણ બે પ્રકારે છે. મોક્ષ માર્ગ બે પ્રકારે નથી. જે સ્વના આશ્રય થાય તે એક જ મોક્ષ માર્ગ છે. અત્યારના કોઈ પંડિત કહે છે કે બે મોક્ષ માર્ગ ન માને એ બ્રહ્મા છે. એ કોઈ વિરોધી હોંગે એસે કોઈ બતાને વાલે? પૂર્વના પંડિત ટોડરમલજી કહે છે કે બે મોક્ષ માર્ગ માને એ બ્રહ્મા છે. વળી હાલના કોઈ પંડિત એમ કહે છે કે વ્યવહારથી ન થાય એમ ન કહેવું, એમ કહેતા નિશ્ચયાભાસ થઈ જાય છે. એ સૌ અલગ અલગ વાતે બતાને. અહીં કહે છે કે ત્રિકાળી એકરૂપ આત્માની સેવા કરતા પર્યાયમાં પણ ત્રણ પ્રકાર પડે છે, તેને વ્યવહાર કહે છે. પ્રવચન સાર ને અધિકાર ગાથા 94મી ટીકામાં કહ્યું છે કે જે ત્રિકાળી ભગવાન આત્માની શ્રદ્ધા જ્ઞાન ચારિત્રની વિતરાગી પર્યાય એને આત્મવ્યવહાર કહીએ, અને રાગાદીનો વ્યવહાર એ મનુષ્ય વ્યવહાર છે. એ આધ્યાત્મક વ્યવહાર કો વ્યવહાર કહા, પણ બાકી જો રાગ દ્વેષ છે તો મનુષ્ય કા વ્યવહાર કહેતે. દયાદાન વ્રત અને ભક્તિનો વિકલ્પ એ મનુષ્યનો માનસિક વ્યવહાર છે, એનાથી સંસાર થશે સમજાય છે કાંઈ. આત્મા જ્ઞાયક સ્વભાવ એકરૂપ વસ્તુની સેવના કરવાથી જે નિશ્ચય સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રકટ થાય તેને સત્ય ભૂતાર્થ મોક્ષ માર્ગ કહ્યો, અને રાગાદી એટલે ક્રિયાકાંડને બંધ અધિકારમાં અભૂતાર્થ મોક્ષ માર્ગ કહ્યો. અભી એ થોડા ડિફિકલ્ટ હૈ, કલ બતાએંગે ઇસકો, ક્યુંકિ ગાઈ ગાઈ કરને મેં કોઈ મજા નહીં, એ કલ દેખેંગે ઇસકો. 17 તારીખે ને. જાવાની કે જ્ઞાન થે સુજે લોકાનો સોવાણી મસ્તકણમ સદા ગેત હોય.